अध्याय 4 पूर्व स्वच्छंदतावाद काल। स्वच्छंदतावाद की एक क्षीण धारा भारतेंदु तथा उनके समकालीन लेखकों की कविताओं, निबंधों, उपन्यासों और नाटकों में देखी जा सकती है। पुनर्जागरण की कौंध सन 40 तक की रचनाओं में मिलती है। पुनर्जागरण के कारण इस देश के लोगों को एक दृष्टि मिली। इससे उन्हें अपनी विशिष्टता को पहचानने और बदलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पहचान के दो धरातल थे, सांस्कृतिक राजनीतिक और वैयक्तिक। पहले धरातल पर बदली हुई परिस्थितियों में रूढ़ियों, अंधविश्वासों को नकार कर ठहराव और गति विरोध से आगे बढ़कर गत्यात्मक बनने की कोशिश की गई। इस अवरोध को गोखले और तिलक ने अपने वक्तव्यों में बार बार रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए गोखले का एक वक्तव्य 1895 उद्धृत किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था के प्रभाव से भारतीय जाति का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दूसरे धरातल पर व्यक्तिता के परिप्रेक्ष्य में पहचान की अनुभूति को गहरा बनाया गया। जातीय विकास के अवरोध को दूर करने के लिए प्रयास जारी था। सन 1905 में बंग विच्छेद से असंतोष की जो लहर फैली, उससे स्वदेशी को प्रतिष्ठा मिली। 1904 में जापान ने रूस को हराया। एशियाई देशों पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। श्वेत जातियों के प्रति उच्चता की भावना बहुत कुछ टूट गई। अपनी भाषा, संगीत और चित्रकला के नवोत्थान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। संगीत के क्षेत्र में भातखंडे और चित्र के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने नया प्रवर्तन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले ही आवाज लगाई थी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। इस युग में इस तथ्य पर साहित्यकारों का, विशेष रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान आकृष्ट हुआ। पुनर्जागरण युग में अतीत के प्रति जो नवनिष्ठा व्यक्त की गई, वह द्विवेदी मंडल के लोगों में भी देखी जा सकती है। किंतु दोनों युगों की अतीतोन्मुखता में अंतर था। इस युग में अतीत को समाज के बृहत्तर आयामों के साथ समाविष्ट किया गया। इसके प्रमाण में मैथिली शरण गुप्त के काव्य साहित्य को उदाहरित किया जा सकता है। इनकी रचनाओं में परंपरा के प्रति आग्रह भी था, पर समसामयिकता के कारण जितना टूट सकता था उतना टूटा भी। भाषा में सफाई, सपाटता और भावनामयता विशेष रूप से द्रष्टव्य है। भावनामयता स्वच्छंदतावादी अनुभूति के आसपास पड़ती है। इस युग में ही वैयक्तिकता प्रधान अनुभूति मूलक साहित्य धारा भी विकसित हुई। श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त आदि इसके प्रवर्तक हैं। प्रकृति चित्रण, कल्पना, उदासी, भग्नावशेषों के प्रति ललक उनकी रचनाओं में मिलती है। वस्तुतः इस काल के लेखकों ने जमीन बनाने का काम किया। गंभीर और अर्थवान रचनाओं की दृष्टि से इस काल का अधिक महत्व नहीं है। जमीन तैयार करने के लिए सामूहिक ढंग पर साहित्य के प्रसार प्रचार के लिए कुछ करने की जरूरत थी। सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के उद्योग से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इस सभा ने विभिन्न विषयों के ग्रंथों का प्रकाशन, हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन, आर्य भाषा पुस्तकालय की प्रतिष्ठा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापन आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। सम्मेलन की स्थापना के बाद सभा ने अपना ध्यान हिंदी साहित्य की समृद्धि में लगाया और प्रचार का कार्य सम्मेलन ने संभाला। सरस्वती का प्रकाशन। सन 1899 में इंडियन प्रेस, इलाहाबाद के स्वामी चिंतामणि घोष ने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। उन्होंने सभा से अनुरोध किया कि उसका संपादन भार स्वयं ग्रहण करें। सभा ने इसके लिए एक संपादक मंडल गठित किया। इस मंडल के सदस्य थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। एक वर्ष तक 1900 ईस्वी यही संपादक मंडल कार्य करता रहा। सन 1901 में इस कार्य का दायित्व श्याम सुंदर दास पर पड़ा, किंतु 1902 के अंत में उन्होंने भी अपने को संपादन कार्य से मुक्त कर लिया। सन 1903 में सरस्वती के संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 को सौंपा गया। उनका जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। वे लड़कपन से ही अत्यंत परिश्रमी और कर्मनिष्ठ थे। रेलवे में नौकरी करते हुए भी उन्होंने कर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। बंबई में रहते हुए उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु अपने बॉस से मतभेद होने पर नौकरी को लात मार दिया। सरस्वती के संपादन प्रकाशन में भी उन्होंने रेलवे की नियमितता बरती, किंतु सरस्वती अपने प्रकाशन के प्रारंभिक दिनों में प्रगतिशील पत्रिका नहीं थी, उसमें अनेक प्रतिक्रियावादी लेख छपे। 1904 में महारानी लक्ष्मीबाई पर एक लेख छपा, उसमें कहा गया है कि महारानी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने 1857 में अंग्रेजों को सहायता का आश्वासन दिया था। उसी लेख में तात्या टोपे को नृशंस हत्यारा कहा गया है। 1905 में एक ऐसे राजा की प्रशंसित छपी थी जिसने 57 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी। इस तथ्य को देखते हुए आश्चर्य नहीं है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों ने सरस्वती में नहीं लिखा। द्विवेदी जी ने बालकृष्ण भट्ट को सलाह दी थी कि वे अपने विचारों के नरमी से काम लें। 1908 में द्विवेदी का लेख संपत्ति शास्त्र की भूमिका सरस्वती में छपा। इसके बाद सरस्वती का रुख बदल गया और वह प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख हुई। इसके पहले उसका रुख प्रतिक्रियावादी था, पर द्विवेदी जी ने जिस लगन, निष्ठा, योग्यता और परिश्रम से सरस्वती का संपादन किया, वह पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत विरल है। इसके माध्यम से उन्होंने गद्य की भाषा को व्यवस्थित किया। अभी तक पद्य की भाषा ब्रजभाषा बनी हुई थी, किंतु उन्होंने गद्य की भाषा पद्य की भाषा के लिए भी खड़ी बोली को चुना। इस प्रकार गद्य पद्य की भाषा की विभाजक रेखा को मिटा कर उनके एकीकरण का जो कार्य संपन्न हुआ, उसका बहुत अधिक महत्व है। अनेक कवि लेखकों को प्रोत्साहित, प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी सरस्वती को ही है। विषयों के चुनाव की दृष्टि से सरस्वती ने जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, वह व्यवहारिक और सामयिक था। सरस्वती के अंकों में प्रायः संस्कृत या हिंदी के किसी प्राचीन कवि की परिचर्चा और हिंदीतर भाषा के किसी सामयिक कवि लेखक का परिचय, इतिहास, पुरातत्व के किसी उन्नत काल का विवरण, यात्रा, भूगोल, स्थान वर्णन, उद्योगपति, समाज सुधारक की जीवनी, चित्र परिचय, देशोन्नति से संबंध समस्याओं पर लेख, राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों के संबंध में सरकार से निवेदन, बालक वनितोपयोगी सामग्री, टिप्पणियों, सामयिक हलचलों का उल्लेख, कहानियां, कविताएं, पुस्तक समीक्षा आदि को देखा जा सकता है। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका से सरस्वती की तुलना की जाए तो यह उससे सर्वथा भिन्न तो नहीं मिलेगी, पर इसमें समसामयिकता के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन की परिहास प्रियता के स्थान पर यह मध्यवर्गीय समाज की नैतिक चेतना के परिष्कार के प्रति अधिक जागरूक थी। सरस्वती में पुराने ढंग की कविताओं और समस्या पूर्तियों के स्थान पर खड़ी बोली की कविताएं छपने लगी थी। नई भाषा और कविता के विषय नए थे। द्विवेदी जी ने अनुभव किया कि रीतिकालीन काव्य वस्तु और शैली पुरानी ही नहीं पड़ गई है, बल्कि अनुपयोगी और जड़ हो गई है। हिंदी काव्य को उन्होंने उपयोगिता से संबद्ध किया। भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने खड़ी बोली में जो कुछ लिखा, उसमें ब्रजभाषा, भोजपुरी के शब्दों का ही मिश्रण नहीं था, बल्कि संज्ञाओं और क्रिया रूपों में भी अनेक विकृतियां आ गई थी। विभक्तियां हटाने के लिए संधियों का रूप भी बिगाड़ दिया गया था। उदाहरणार्थ दुनिये, दुनिया, असिल, असली, नेव, नीव, इससे, उससे, जिससे, तिस पर, उचिता, देश, प्रगटाएं, प्रचारों, हर्षाना आदि शब्दों को देखा जा सकता है। अंबिका दत्त व्यास के मतानुसार यह के स्थान पर यह और वह के स्थान पर वह लिखा जा सकता था। भाषा संबंधी इस अव्यवस्था को दूर करने की जो कोशिश द्विवेदी जी ने की, वह साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। द्विवेदी जी का कहना है कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतुक हल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परिक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चीटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य से बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, रसज्ञ रंजन से लिया गया था। काव्य भाषा के संबंध में उनका विचार था कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ ले। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है, वह बहुत लोकमान्य नहीं होता। काव्य भाषा के संस्कार परिष्कार के साथ साथ उन्होंने स्वयं कविताएं लिखी। अपनी काव्य प्रतिभा के संबंध में वे मोगलते में नहीं थे। उनका मुख्य कार्य खड़ी बोली कविता को नाना विषयों और शैलियों की ओर उन्मुख करना तथा उसकी भाषा को संस्कार देना था। उन्होंने संस्कृत की काव्य माधुरी को वृत्तों को हिंदी में अवतरित करने के लिए कुछ रचनाओं का अनुवाद किया। विनय विनोद, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद, विहार वाटिका, जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद, स्नेहमाला, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद, श्री महिम्न स्त्रोत, संस्कृत महिम्न स्त्रोत का अनुवाद, गंगा लहरी, पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद, ऋतु तरंगिणी, कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद। ऐसे ही ग्रंथ हैं। उनके मौलिक पद्य ग्रंथ हैं देवस देवी स्तुति शतक, कानिकुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र संपादक स्तव, नागरी, काव्य मंजूषा, कानिकुब्ज अबला विलाप, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला और कविता कलाप, द्विवेदी जी द्वारा संपादित, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा शंकर, कामता प्रसाद गुरु, मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं का संग्रह। वर्ण विषय की दृष्टि से उनकी कविताओं को चार कोटियों में बांटा जा सकता है, देशभक्ति, आध्यात्मिक, समाज की अधोगति और हास्य व्यंग्यपूर्ण अन्योक्तियां। किंतु ये सभी रचनाएं इतिवृत्तात्मक हैं। इसके कई कारण हैं। सच तो यह है कि उनमें कवि प्रतिभा का अभाव था। उनके उपयोगितावादी दृष्टिकोण के कारण भी काव्य में अपेक्षित सरसता नहीं आ सकी। खड़ी बोली पद्य का यह आरंभिक काल था, इसलिए उनका वर्णनात्मक होना स्वाभाविक था। किसी भी भाषा में भावाभिव्यंजन की क्षमता आते आते आती है। द्विवेदी जी की प्रारंभिक कविताओं में वलिवर्त, विधि विडंबना, हे कविते आदि में भाषा की संकरता प्रचुर मात्रा में मिलती है। शब्दों के प्रयोग में न तो परिनिष्ठता है और न एक रूपता। ब्रजी से अभी उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। शब्द रूपों, संधियों और क्रियापदों में भी मनमानापन दिखाई देता है। थिर, मिटाए, तपी, अकुलानी, योग्यता, मूर्खताई आदि सदोष प्रयोग हैं। नाम धातु की संयुक्तता को उन्होंने कविता में प्रयुक्त करना पसंद नहीं किया, किंतु इसे दोष न मानकर भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सहायक समझना चाहिए। अवगाहा, स्वीकारा ऐसे ही शब्द हैं। बाद में वे भाषा की व्याकरण सम्मत शुद्धता के प्रति सावधान हो गए। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ के नवीन सिद्धांत, गद्य और पद्य का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए, का पालन द्विवेदी जी यथाशक्ति करने लगे और दूसरे भी उनके प्रेरणा से ऐसा करने पर बाध्य हुए। परंतु जैसा कि जब साहित्य मर्मज्ञ समझते हैं, वर्ड्सवर्थ स्वयं अपने सिद्धांत का पालन सर्वोत्कृष्ट कविताओं में नहीं कर सका था, उसी प्रकार द्विवेदी जी भी सब जगह इस सिद्धांत का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। किंतु सिद्धांतता वे इसके पक्ष में थे कि यथासंभव संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कम होना चाहिए। वे भावानुकूल छंद योजना के पक्षपाती थे। द्रुत विलंबित, वंशस्थ, वसंत तिलका आदि संस्कृत वृत्तों के अतिरिक्त हिंदी और उर्दू के छंदों का प्रयोग भी उन्हें स्वीकार्य था। इस प्रभाव से यह हुआ कि हिंदी कविता गिने चुने छंदों के बाहर आकर नए नए छंदों में ढलने लगी। बंगला के मेघनाथ वध और मराठी के यशवंत राय महाकाव्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, यदि मेघनाथ वध अथवा यशवंत राय महाकाव्य वे नहीं लिख सकते तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। इससे प्रभावित होकर हिंदी के कवियों का ध्यान पौराणिक कथानकों को नए रूप में प्रस्तुत करने की ओर गया। यद्यपि हिंदी के कवि माइकल मधुसूदन दत्त की भांति यूनानी पुराण गाथा की कलम अपनी पुराण गाथा में नहीं लगा सके, फिर भी युगानुरूप उसमें परिवर्तन किया। हरियोध और मैथिली शरण गुप्त ने इस दिशा में महत्व के कार्य किए हैं। गुप्त जी ने पौराणिक कथाओं के आधार पर खंड काव्यों की भी रचना की है और निबंध काव्यों की भी। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों, मान्यताओं और तपश्चर्या की फलश्रुति थे मैथिली शरण गुप्त। पूरे दो दशकों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का निर्बाध आचार्यत्व छाया रहा। काव्य रचना की दृष्टि से उनकी कमी की पूर्ति गुप्त जी ने की। इन दो दशकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व गुरु शिष्य करते हैं। उनकी पहली कविता हेमंत सरस्वती 1905 में प्रकाशित हुई। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप उन्होंने 5-6 वर्षों में ही पौराणिक ऐतिहासिक चित्रों तथा देश काल धर्म समाज में संबद्ध अनेक रचनाएं लिख डाली। द्विवेदी जी की तरह गुप्त जी भी गांव चिरगांव के रहने वाले थे। उनकी स्कूली शिक्षा भी मामूली तौर पर ही हुई थी, किंतु उस पीढ़ी में अद्भुत जीवन कर्मठता और संकल्प शक्ति थी। ये विशेषताएं उनके जीवन और काव्य संघर्ष दोनों में परिलक्षित होती हैं। गुप्त जी के परिवार और परिवेश दोनों पर गहरा वैष्णवी रंग था। उनके पिता माधुर्य भाव से उपासना करते थे। गुप्त जी की दीक्षा भी इसी संप्रदाय में हुई थी। उनके परिवेश में जो गांधीवादी विचारधारा परिव्याप्त थी, उसका मेरुदंड भी वैष्णवी था, किंतु जो भक्ति उन्हें विरासत में मिली, उसका वैष्णवपन देश काल के मेल में नहीं था। गुप्त जी ने उससे संशोधित कर मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना आराध्य बनाया। गांधी जी के आदर्श भी राम ही थे। उनकी राज्य कल्पना राम राज्य की कल्पना थी। वह युग एक मर्यादा और संयम से बंधा हुआ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा था। गुप्त जी का काव्य मर्यादा और संयम की डोर में बंधा हुआ नए जागरण का मंत्र फूकने में सर्वथा समर्थ सिद्ध हुआ। अभी तक हिंदी खड़ी बोली का काव्य नवीन युग चेतना को नहीं अपना पाया था। गुप्त जी पहले कवि हैं जिन्होंने अपने समसामयिक नैतिक धार्मिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वाणी देकर खड़ी बोली को युगीन चेतना से जोड़ा। इसी अर्थ में वे राष्ट्र कवि हैं। इससे यह समझना नहीं चाहिए कि गुप्त जी ने पुराने आदर्शों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। उन्हें पुराने नैतिक मूल्यों में अटूट आस्था थी, अतीत के प्रति प्रबल आकर्षण था, किंतु वर्तमान की समस्याओं के प्रति वे पूर्णतः जागरूक थे।